वाणी में शेरनी सी ललकार और चेहरे पर ममतामयी वात्सल्य, ऐसी हमारी आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। यूं तो विस्तृत परिचय कल दे दिया था, लेकिन आप सभी को पता हो नीचे मनमोहिनी वन में गीता महासम्मेलन चल रहा है और दीदी का आगमन विशेष उसी प्रोग्राम के लिए हुआ है आना। और आप सभी को ये पता हो कि दीदी धार्मिक प्रभाग के अध्यक्षा हैं, तो ऐसे हमारे दीदी जो धर्मों के क्षेत्र में हमारे धर्म और संत हैं उनको भी बहुत अच्छी से कन्विंस करते हैं आज हमारे बीच में सच्चे दिल पर साहेब राजी कैसे होता है, इसे अपने अनुभव से हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। जितने भी ब्राह्मण कुलभूषण यहां बैठे हैं, निस्संदेह सच्चे दिल वाले हैं। कोई संदेह है कि सच्चा दिल नहीं है? सब सच्चे दिल वाले हैं और साहेब राजी है। कल से, शाम से और आज की शाम काफी समय निकल गया है। कैसा लग रहा है? प्यारा लग रहा है। कुछ लगा, कुछ चेंज है? हाँ? अपने आप में कुछ ऊर्जा, कुछ स्फूर्ति, जैसा मैंने कहा था कि एक एक पल संजो लेने के लिए है। पांडव भवन के अंदर तो इतना बड़ा सौभाग्य आप सच्चे दिल वालों को मिला, न जाने कितनी आत्माओं ने मिलन से ये प्रोग्राम बनाया होगा कि इस बार भट्टी होगी तो हम जरूर जाएं। मगर पहुंचे कौन, कई तो ट्रेन आने पर भी नहीं पहुंच पाए होंगे, कोई ना कोई कारण निमित्त बन गया होगा और उनके स्थान पर कोई दूसरा तत्काल चल दिया होगा, ऐसा भी होता है ना कि हम जाते हैं कोई नहीं है। देखो दो आत्माएं बोली हम हैं, ऐसे बहुत भाग्यशाली है। कुछ कार्य योजनाबद्ध होते हैं, उनके लिए प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं, ऐसा करेंगे। कुछ अचानक होते हैं, भगवान के घर से हमको ऑफर मिलती है कि आपको मधुबन आना है, बहुत खुश होते हैं। मधुबन में बुलाया गया, क्या बात है। तो हम जो है तैयार होते हैं, दीदी को भी यस बोलते, दीदी जाएंगे, बाबा ने बुलाया है, हम क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन ऑफिस से छुट्टी का न मिलना, घर में अचानक किसी का अस्वस्थ हो जाना, बीमार पड़ जाना, कोई बात खुद को ही हो जाना, सॉरी नहीं जा पा रहे, होता है ना, नहीं जा पाते। बड़ी बात तो तब जब हम पहुंच जाते हैं तो खुश होते हैं कि हमने प्रोग्राम बनाया और हम पहुंच गए। तो आज की पॉइंट रखी है सच्चे दिल पर साहेब राजी, भगवान भी राजी हो ना। हमने तो प्रोग्राम बनाया था आने का, जब भगवान की रजा होती है तब वो कार्य संपन्न होते हैं। अगर कार्य संपन्न नहीं हुआ और मुसाफिर मंजिल पर नहीं पहुंचा तो इसका मतलब कभी हम ड्रामा कहकर छोड़ते हैं और कभी ये कहते हैं कि ऊपर वाले की लगता है रजा नहीं थी, ऊपर वाला हम पर राजी नहीं था, मेहरबान नहीं था, नहीं तो भला हम वहां जा नहीं पाते हैं। कुछ तो है, लगता है ना ऐसा, कुछ तो है, अरे हमको जाना ही था। तो आज हम सच्चे दिल पर भगवान कितना राजी है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सच्चाई की व्याख्या करनी है क्या हा? अरे वो तो आप जानते हो, सब जानते हो सच्चाई क्या होती है। बाबा के सामने हमें कोई गणित न लगाना पड़े, सब कुछ क्लियर हो, स्पष्ट हो, हमारे जीवन का गुजरा हुआ इतिहास भगवान के सामने एज इट इज हो, जैसा हमने गुजारा है, कुछ कहीं छिपाया ना हो, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई लुकाव नहीं, कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। आप जानते हो उसकी निशानी क्या, बहुत निर्भय होगा। कोई अगर कहेगा भी चलो दादी के पास चलते, बोला चलो, क्यों चलो, हमने कुछ रखा ही नहीं है, हमने कुछ साइड से छुपा के नहीं रखा है, जो दादी के सामने ले चल के हमारी बात कह दोगे और हमको भय लगेगा। निर्भयता का लक्षण, निर्भयता की शक्ति हमें अगर है, आती है, तो इसका मतलब बहुत साफ है, सच्चे हैं, कोई छल कपट है ही नहीं, क्या होगा ऐसा सोचने का नहीं है, सब कुछ ओपन है। जब सब कुछ ओपन है तो फिर क्या डर, फिर क्या भय। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में लें, थोड़ा पलट लीजिए, बाबा ने कहा है, तीन शब्द बोले हैं, स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, सर्व प्रिय। खेल केवल तीन शब्दों का है। हम बाबा के बनते हैं तो प्रभु प्रिय बनने की ख्वाहिश होनी चाहिए। आते भी यहां पर, कदम रखते भी इसीलिए हैं कि भगवान ने हमको चुना है, हम भगवान के प्रिय बने। लेकिन रास्ते में कई और भी मिल जाते हैं, है ना? पहले तो वो दीदी मिलती है जो कोर्स कराती है, फिर उनसे बड़ी दीदी मिलती है जो वहां की इंचार्ज होती है, फिर कोई और मिल जाता है, मधुबन आते हैं तो लोग मिल जाते हैं, और धीरे धीरे ये कुनबा, ये परिवार बढ़ने लगता है। तो आए थे हम प्रभु प्रिय बनने, लेकिन हम इस कुनबे के, इस परिवार के प्रिय बनने में लग जाते हैं, होता है ना? और जब परिवार के प्रिय बनने लगते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है ना। बहुत अच्छा एक शेर है, गालिब बुरा न मान गर साहिल बुरा कहे, दुनिया में है कोई जिसे अच्छा सभी कहे। हम एक दो के प्रिय बनने के चक्कर में, हम प्रभु प्रिय बनने आए थे ये बात छोड़ देते हैं। और सर्वप्रिय बनने लग गए तब तो कतई बेड़ा पार। क्यों? एक एक पत्ते को सींचने लग गए, और जब एक एक पत्ते को हरा करने में लगे तो मौलिक रूप से जो जड़ में पानी डालना चाहिए वो टाइम हमारा वेस्ट हो गया, इधर उधर चला गया। और अगर इधर उधर चला गया तो कब स्वयं प्रिय बनेंगे, कब प्रभु प्रिय बनेंगे, कब सर्व प्रिय, तो जाने दीजिए, बनने ही नहीं है। तो बात है सच्चे दिल पर साहेब राजी, और सच्चा दिल जिसका होता है वो कभी गणित नहीं लगाता। उसकी निशानी है वो झाटकू होता है, एक पल में संपूर्ण जीवन का सौदा कर लेता है। भक्ति में शबरी की कहानी सुनाते हैं लोग, सबने सुनी होगी कहीं ना कहीं। और शबरी ने एक पल में सौदा किया था। बहुत मशहूर है कि शबरी सबरी कैसे बनी। अपने घर में रह रही थी, उसके पिता ने बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए थे, तो वो उनको बड़े प्यार से चारा पानी दे रही थी। तो उसके पिता के मुंह से निकल गया कि बेटा बेकार तुम इन्हें प्यार कर रही हो, दो दिन बाद तुम्हारा विवाह होगा और उस समय ये सब भोज में बलि चढ़ेंगे, कार्य में आएंगे। तो शबरी बहुत हृदय से दयालु थी, उसको लगा ऐसा विवाह जिसमें इतने सारे ये जानवर मार दिए जाएंगे, इन्होंने क्या किया है, क्यों मारेंगे, मेरे को ऐसा विवाह नहीं करना। और उसको ये संकल्प आया और उसने उसी दिन घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद जब वो भटकती हुई ऋषि आश्रम के बाहर, तो उसे एहसास था कि मैं निम्न वर्ण की हूं, आश्रम में मुझे प्रवेश मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बाहर आश्रम की दीवार के सहारे रहे और सुबह सुबह उस आश्रम की सफाई करके फूल चुन देती थी। तो जो ब्रह्मचारी रहते थे वो बोले, गुरुजी आजकल हमारा तप बहुत बढ़ गया, हमको आश्रम की सफाई नहीं करनी पड़ती, हमको फूल नहीं चुनने पड़ते, अपने आप वेदी पे फूल आ जाते हैं। तो गुरु ने कहा, रुको ऐसे नहीं, आज की रात पहरा दो और देखो ये काम कौन करता है। तो जब पहरा दिया गया तो अमृत बेले सबरी पूरा आश्रम साफ करके फूल चुन रहे थे। तो आवाज लगाई, कौन? तो रोने लग गई, आंखों से आंसू गिरने लगे और उसके मुंह से यही निकला, त्राही माम, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, मेरे सफाई करने से आपका आश्रम अशुद्ध हो गया है, मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो जब वो रोने लगी तो बात गुरुदेव तक पहुंची। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हें माफ कर देंगे लेकिन ऐसे नहीं, तुम इस आश्रम के अंदर रहोगी और रोज ये कार्य करोगी। तो उसने कहा, मैं तो निम्न वर्ण हूं और कैसे करूंगी। बोला, जैसे अभी किया तुमने ऐसे करोगी। और उसे उन्होंने छुट्टी दी, उसके एक गुण के कारण उसको छुट्टी दी और वो रोज आश्रम की सफाई करती थी। ज्ञान दिया नहीं गया, ज्ञान तो वहां जो रहते थे ब्रह्मचारी उनको दिया जाता था, मगर कान तो बंद नहीं है ना, सबरी ने भी सुने। और राम के प्रति जो आस्था बनी, तो जब गुरुजी जाने लगे तो बोले, शबरी मैं तो इन आंखों से अपने राम को, अपने इष्ट को नहीं देख पाया, लेकिन राम आएंगे, मैं तुम्हारी आंखों से देखूंगा राम इस रास्ते से गुजरेंगे। सबरी ने इंतजार किया निश्चय बुद्धि होके कि मेरे गुरुदेव कह गए हैं राम इधर से गुजरेंगे। आगे की कहानी आप सब जानते होंगे, उसने जब बेर खिलाए उसके साथ लोग व्यंग हास्य विनोद मना सब करते थे। जब वो रास्ते को बुहारती थी, झाड़ू लगाती थी, तेरे राम कब आएंगे, तो हंसती थी, राम आएंगे, उसे 100% निश्चय था कि राम आएंगे, गुरुजी ने कहा है तो आएंगे। और जब राम वहां पहुंचे तो बेर जो निकाल के लाई तो कहीं खट्टा और कड़वा न चला जाए, चख के खिला रही थी। उन्होंने वो भी प्रेम से खाए, मगर लक्ष्मण ने गणित लगा लिया, जूठे कौन खाएगा, फेंक दिए उन्होंने। आपको पता हो वही बेर जो उन्होंने फेंके थे संजीवनी वृक्ष बने, अंतिम जीवन के मूर्छा से उन्हें वापस लाए, कुछ और नहीं था। तो एक कहावत है, प्रेम में नेम नहीं होता। मैंने ये कहानी क्यों सुनाई कि सबरी का दिल सच्चा था, साफ था, हाँ, परमात्मा ने कृपा की, बाबा हम सब सबरियों पे कृपा करते हैं, हमारी आत्मा निम्न वर्ण में है इस समय। कहते हैं ना, ज्ञान सुना होगा, खूब समझाया होगा दीदियों ने, 84 जन्मों का अंतिम है और अंतिम शूद्र वर्ण है। शूद्र से बाबा ने आकर के हमें ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण बनाकर फरिश्ता बनाया, फरिश्ता बनाकर देवता बनाने चला। 21 जन्मों की बात साथ खुले दिल से बाबा हमको देता है। तो हम सब बाबा की सच्ची सच्ची सबरियां हैं। वो राम तो दशरथ नंदन है जिनकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये राम उस राम का भी राम है जो हमारे लिए आया है, आया ना हमारे लिए। नहीं आया है। यही मधुबन है, यही पांडव भवन है, यही घर है। भले ये बाद में बना, मेडिटेशन हॉल बाद में बना, छोटे वाले हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने किसी ने सवाल पूछा था, बाबा आपका यज्ञ कैसे चलता है? इतना बड़ा यज्ञ है, इतने लोग हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे जानना ही चाहते हो? बोले, जी बाबा मैं जानना चाहता हूं। तो जब क्लास चल रही थी, बाबा ने कहा, बच्चे जाओ अभी भंडारे में देख कर आओ। तो वो भाई जब उठ के भंडारे में गए, तो एक कोई माता पोटली में थोड़ा थोड़ा सामान लिए हुए थी और संकोच में कि ज्यादा हो तो बाबा के आगे रखूं, ये थोड़ा थोड़ा कैसे रखूं। तो वो धीरे धीरे मसालदानी का एक एक डिब्बा खोलती थी और देखती थी कि इसमें क्या है, मेरे पास भी वो है तो उसमें मिला दूं, नहीं तो बंद कर देती थी। तो जब उसने वो दृश्य देखा, दोबारा आके क्लास में बैठा, दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे उत्तर मिल गया? बोला, जी बाबा मिल गया। तो मेरा यज्ञ मेरी माताएं मेरे गरीब बच्चे चलाते हैं। ये हमारा फक्र करना अपने ऊपर कि ये यज्ञ हम चलाते हैं, इस यज्ञ में चेक काट के हम देते हैं, इस यज्ञ में रैगजीन सोफे की जो आई, हम लोग तो नीचे बैठ के ही पढ़े। मेरा ख्याल है कि बाबा के यज्ञ में सबसे पहले सोफों के लिए जो रैगजीन आई थी, करुणा भाई किसी फैक्ट्री से करा के लाए थे, पहले नहीं थे ये सोफे। तो एक एक चीज, एक एक बात, मैंने यज्ञ का इतिहास अगर आप पलट कर देखेंगे तो बाबा के बच्चों ने कैसे कैसे पहले सबरी की तरह भोग लगाया बाबा को। मुझे याद है 19 हम लोग इटावा में थे, तो एक शर्मा जी थे, वो आए बताने कि हम गाड़ी लेकर यज्ञ में जा रहे हैं। ये 70 के दशक की बात है। तो हमारे यहाँ की तो गाड़ियां सब सेल आउट हो चुकी थी ना, जब यज्ञ पूरा वहां से ट्रांसफर होकर आया, फिर यहाँ गाड़ियां नहीं थी। बैलगाड़ी पे बाबा के बच्चे बस अड्डे तक जाया करते थे। तो उस समय वो कार उनके बेटे को शादी में मिली थी और वो कार लेके यहाँ आए थे कि हम कार लेकर जा रहे हैं, बाबा के यज्ञ में ये भेंट करेंगे। तो बहुत से ऐसे जिनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन यज्ञ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने कभी भी कोई बिजनेस नहीं किया, कभी कोई गणित नहीं लगाया, और जो सामने संकल्प आया तुरंत झाटकू, जिसको बाबा कहता था ना कि ये बच्चा मेरा झाटकू है, हाँ, ये धीरे धीरे नहीं हलाल हुआ, ये एक क्षण में बाप पर परिहार गई आत्मा है। तो ये यज्ञ जब आदि में बना तो ऐसे ही झाटकू बच्चों से बना, जिन्होंने बाबा को एक नजर में पहचाना और ये समझा कि मेरा राम आया है, जिन्होंने ये जाना कि भगवान आया है, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के स्वरूप में दोनों छवि एक साथ देखी, कभी ब्रह्मा को देखा तो कभी योगीराज कृष्ण को देखा, कभी संपूर्ण चतुर्भुज स्वरूप देखा और बलिहार गए। हमारे साथ कम नहीं हुआ। हम जितने यहां बैठे हुए हैं सब अनुभवी हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई मिरेकल ना हुआ हो, कोई ऐसा अनुभव ना हुआ हो जब उसने साक्षात बाबा को अपने साथ अनुभव न किया हो। है कोई ऐसा? विचार करना कोई ऐसा हो वो हाथ उठाए कि हमें तो अभी तक कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि जब हमने बाबा को अनुभव न किया हो। अनेकों बार असंभव से संभव हुआ और बाबा ने किया, लेकिन वाहरे इंसान की फितरत जो भूल जाता है, मेमोरी कमजोर है, हमारी मेमोरी कमजोर है। मैं उदाहरण दे सकती हूं कि जब हम निकलते हैं घर से किसी कार्य के लिए तो बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप साथ चलना, आज फला से मिलना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो साइन नहीं करेगा तो ये काम नहीं होगा, बाबा बहुत जरूरी है, बाबा प्लीज आप चलना, बाबा प्लीज। बाबा को प्लीज करके ले जाते हैं और जब वहां साइन हो जाते हैं, बोला ना था ना बाबा हम बच्चों की बातों में आ जाते हैं, भोलानाथ है, और हम जाके जब पहुंचते हैं वहां और वो कहता है कि जाइए आपका काम हो गया, इतना खुश होके निकलते बाहर, कॉलर ऊंचा करके एकदम। हाँ, बाहर जो हमारा वेट कर रहा होता है पूछता है हो गया भैया, अरे बोला क्या बात थी, मैं गया उसने मुझसे ये कहा, मैंने ये जवाब दिया, ये जवाब दिया, ये कहा, तुरंत हो गया। यानी यहां तक होता है कि हम लौट के आके बाबा को थैंक्स भी नहीं देते, तत्काल भी नहीं देते, भूल जाते। रात को बैठेंगे जब शाम को 6:30 से 7:30 के योग में, या फिर कहीं पार्टी देने निकल गए किसी को तो अलग बात, वो भी नहीं होता, तो बाबा देखता है कि हम बच्चे क्या करते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी। फिर अगली बार जब हम प्लीज करते हैं तो बाबा खिसक जाते हैं। वो जानता है कि हमने पहली बार गड़बड़ की थी, होता है ना। तो बाबा को तो राजी करना बड़ा आसान है, लेकिन जो बीच में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो हमें गड़बड़ से बचना है, इसलिए टॉपिक रखा है। तो पहले हम स्वयं से स्वयं सच्चे बने, स्वयं से स्वयं सच्चे मन स्वयं प्रिय बने। स्वयं प्रिय बनने का मतलब जो बाप दादा की श्रीमत है, जिस श्रीमत के अनुसार हमारे जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए। अब गौर करना आप अपने आप पर कि क्या हम दावा कर सकते हैं कि जो बाबा हम बच्चों से चाहता है हमारी दिनचर्या उसके अनुकूल है। नहीं ना। न जाने कितनी बार हमसे अमृत बेला मिस होता है, न जाने कितनी बार, और हम अपने मन को समझाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते हैं। हमारी आदरणीय बड़ी दीदी, जिनका अभी जुलाई मास गुजरा है, बहुत अच्छे से समझाया करती थी कि हमारी चारपाई के नीचे कौन, आलस और अलबेलेपन के दो बच्चे बैठे रहते हैं। जब हम उठते हैं तो कभी आलस रोने लगता है, उसको चुप कराते हैं, तो कभी अलबेलापन रोने लगता है, उसको चुप कराते हैं, और पता लगा उसमें अमृत बेला व्यतीत हो जाता है। मन कैसे समझाता है बुद्धि को, बोला अरे क्या हुआ बता देंगे ना, बाबा नहीं जानता कि हम बहुत थके थे, बाबा नहीं जानता कि कल हमने रात को 12 बजे तक सेवा की थी, कभी अलबेलापन तो कभी आलस, और ये दोनों मिलकर के हमारी टांग खींचते और हमको योग नहीं करने देते। तो हमारे स्वयं प्रिय, स्वयं से स्वयं सच्चे होने में पहली बाधा यहां आती है। दूसरी बाधा कहां आती है आप लोग बताओ जी, मुरली क्लास में नहीं, वहां जागृत होते हैं। श्रीमत को भी हम उतना ही धारण करते हैं जितनी अनुकूल होती है, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। अगर थोड़ी हार्ड होती है ना, तो जैसे वो गोली और कैप्सूल का साइज देख के बोलते कैसे जाएगा अंदर, अरे पानी लो ना, जाएगा अंदर जाएगा, खाना तो पड़ेगा ना, रोग है तो। ठीक उसी तरीके से श्रीमत अगर हार्ड है तो योग का जल लेकर अंदर ले जाओ ना, खाना तो पड़ेगा ना। तो हमको श्रीमत के अनुकूल, मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको बहुत आनंद आएगा, बाबा ने यहां लिखवाया था क्रोध नहीं करने का, तो मैंने भी लिख दिया नहीं करने का। तो मेरे साथ जो एक बहन बैठी थी उसने मुझसे पूछा तुम गुस्सा नहीं करोगे, तो मैंने कहा करेंगे, बोला फिर क्यों लिखा क्यों लिखा, मैंने कहा बाबा को नहीं मालूम है कि मेरे को कुंभ मेला करना है, कुंभ मेला करना है माना बहुत सारे इंतजाम बहुत सारा काम कुंभ मेले में होगा, और जो नहीं करेगा तो नेचुरल उसको आंख दिखाऊंगी ना। तो बाबा को भी तो मालूम है ना कि मुझे कुंभ मेला करना है। तो वो बहन बहुत हंसी, बोला आप चतुराई कर रहे हो, मैंने कहा चतुराई नहीं कर रही, बाबा को बता दूंगी ना बहुत अच्छे से कि बाबा आप बताओ मैं क्या करूं। ये बात क्यों सुना रही हूं आपको, अपनी कमी को भी कभी दबा के नहीं रखना चाहिए। अगर कोई कमी है और ये छोटी सी कमी है एक पल की एक सेकंड की, बस एक सेकंड के लिए आता है, अभी भी आ जाता कभी कभी, पहले बहुत आता था अभी नहीं आता, तो दे दे के छुटकारा हुआ ना बाबा को। वो जो एक सेकंड वाली बात है वो भी केवल दिखावा भर है, लेकिन उसका भी प्रायश्चित होता है और लगता है कि बाबा ये एक सेकंड को भी नहीं आना चाहिए, ये भी छूट जाए, एक सेकंड भी क्यों आता है। वो मुझे लोग समझाते हैं, मुझे उलट के समझाते हैं कि दीदी इंतजाम में या काम में आपको कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलिएगा तो बिगड़ जाएगा। सही है, मगर मुझे लगता है ये भी छलावा है, धोखा देना अपने आप को। उसी एक सेकंड में अगर मान लो ब्रेन हेमरेज हो जाए, उसी एक सेकंड में बीपी बढ़ जाए, उसी एक सेकंड में अटैक होने के बाद लटक जाएंगे या हाथ पैर, है ना। जब ब्रेन हेमरेज होता है तो क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। क्या मंजूर है मुझे कि मुझे पैरालिसिस हो जाए, या उसी एक सेकंड में मैं चली जाऊं तो क्या होगा। वो जो कहते हैं ना कोटि कोटि सब जतन कराही अंत राम कह आवत नहीं, माने मैंने बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन ये एक सेकंड की मेरी कमजोरी मुझे कहां ले जाएगी। मैं ये बात क्यों सुना रही हूं, भले मुझे इंतजाम करना है, भले मुझे कुंभ मेला करना है, लेकिन भगवान ने मुझे छुट्टी नहीं दिए है, दिए गई दिए कभी नहीं दिए, किसी को नहीं दिए। तो ये विचार करने वाली बात है, लेकिन मैंने बाबा के आगे एज इट इज रख दिया। आज बाबा ने मुरली में कहा था धीरे से माया ताला लगा देती है। मेरे बहनों भाइयों, बहुत 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 पतली सी लकीर है। हम समझते हैं कि नहीं, हमने नहीं किया, अरे केवल आंख दिखाई थी एक सेकंड के लिए कि बाबा का यज्ञ है, नुकसान ना हो, सुधर जाए। लेकिन कब हम उस पतली सी लकीर को क्रॉस कर गए हमें पता नहीं पड़ता है। परिणाम सामने आते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये उस समय की बात है, उस समय ऐसा हुआ था। बाबा कहता है एक पल भी अगर हमने कुछ किया होगा तो धर्मराजपुरी में हमको स्पष्ट साक्षात्कार, धर्मराजपुरी कहीं और नहीं है, यही होने हैं वो सारे साक्षात्कार। तो हम कितने सच्चे हैं अपने आप से, कितने साफ हैं उस भगवान से, ये दोनों बातें हर समय हमारे सामने आईने की तरह स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे जीवन में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तब हमारे दिल पर वो साहेब राजी होगा। कुछ भी छुपाने के लिए हमारे पास नहीं हो, हमें सुदामा की तरह एक मुट्ठी भी नहीं छुपानी है, आई बेल के लिए भी कुछ नहीं रखना है। कोई कहेगा ये समझदारी नहीं है, ठीक है, जब भगवान ने सारी जिम्मेवारी ले लिए तो मुझे किसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। जिसका कार्य है वो करेगा। बाबा के महावाक्य हैं कि अगर आपने कभी भी कहीं भी बाबा की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया है तो बाबा ने कहा बहुत भीषण परिस्थितियों में मैं तुम्हें वतन में खींचकर पानी पिलाऊंगा, मैं तुम्हें वतन में बुलाऊंगा और खाना खिला दूंगा इतना कि तुम तृप्त हो जाओगे। अनेकों बार मुरली में भी सुना होगा मेरे बच्चों को कभी रोटी दाल की कमी नहीं होगी, वो 56 भोग नहीं मिलेगा चलेगा। दूसरी बात एक और बता दूं आपको, जो सोचते हैं कि हमने आई बेल के लिए रखा हुआ है चोरी हुई, और दूसरा ये कि ऐसे समय पर लोग रहने नहीं देंगे आपका स्टॉक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1972 में थोड़ा थोड़ा सूखे की और अकाल की स्थिति थी, अनाज नहीं हो पाया था, तो लोग चिट्ठियां लिख के आते थे कि आज आपके घर में डकैती डालनी है, और वो डकैती डालने के लिए जानते हैं आप क्या करते थे, चादर लाते थे, किसी को नहीं बोलते थे कुछ भी, और घर में जहां अनाज होता था वो पलट लेते थे और चले जाते थे। अपनी आंखों से देखा है मैंने ये, तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने पास स्टॉक रखेंगे, जो सोचते हैं ना कि स्टॉक रखेंगे तो वो स्टॉक लोग पलट के ले जाएंगे, हाँ दरवाजा पीटेंगे और वो कहेंगे कि क्या चक्कर है, हम सब परेशान हो रहे हैं और ये बड़ी शांति से बैठे हैं, जरूर इन्होंने कुछ रखा हुआ होगा, जरूर इनके पास कहीं कुछ होगा, तब तो ये नहीं बोल रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूं, स्टॉक रखने की बजाय हमें अपने अंदर संयम का, शक्तियों का, योग का स्टॉक रखना है। भगवान राजी होगा तो बिना किसी स्टॉक के भी हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। हमें नहीं चाहिए, जब हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद कोई हथियार उठा लेते हैं तो भगवान क्यों सुरक्षा करेगा, बोलेगा तुमने उठा लिया ना हाथ में, और जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा तो भगवान खुद आकर खड़ा हो जाएगा। और आदि में भी सेवाएं जब शुरू हुई थी तो ऐसे एक दो नहीं, अनेकों किस्से इस यज्ञ के इतिहास में दर्ज हैं। बहुत मना शुरू शुरू में लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की थी कि अरे ये क्या नया ज्ञान लेकर निकली हैं और ये लड़कियां क्या ज्ञान सुनाएंगी, कैसे करेंगी, सब तोड़ फोड़ दें, सब ऐसा कर दें। लोग तैयार होकर के आए, दिल्ली चांदनी चौक की बात है, और शाम को 6:30 से 7:30 जो हमारा संध्या योग होता है, बहने निष्ठा में बैठी हुई थी। तो जब वो लोग तोड़ने फोड़ने के लिए आए भी तो योग चल रहा था, आकर के चुपचाप बैठ गए। योग चल रहा है, बहने बैठी हैं योग में, उन्होंने इशारा भर कर दिया बैठो बैठो। उसके बाद योग खत्म हुआ तो नीचे उतरे तो एक दूसरे से पूछते हैं तुम क्यों नहीं बोले। वो कहता तुम क्यों नहीं बोले, बोला तुमको ऐसा करना था। बोला वहां तो कोई बोल ही नहीं पा रहा था, हमारे मुंह बंद हो गए थे, हम भूल गए थे कि हम वहां किस लिए गए हैं। तो भगवान स्वयं बैठा है ना रक्षा करने के लिए, बहनों ने तो कुछ नहीं उठाया ना, कुछ नहीं उठाया अपने हाथ में, कुछ नहीं पूछा उनसे कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्या बात है। तो भगवान स्वयं रक्षा करता है, लेकिन कब, जब हम पूरी पतवार भगवान को सौंप देते, जब हम सब कुछ भगवान के हवाले कर देते हैं, तो हम स्वयं प्रति सच्चे हों, हम भगवान के प्रति सच्चे हों, तब हम रास से रास मिला पाते हैं, तब भगवान हमारा साथ देता है। अगर कुछ भी छुपाया हमने और बाबा से सुबह सुबह बोला, बाबा आप तो सब जानते ही हो ना, जरूरी थोड़ी है कि दीदी को भी बताऊं, निमित्त को बताऊं, ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको बता तो दिया है ना। कई बार ऐसा भी कर लेते हैं, और जब ऐसा कर लेते हैं तो चोरी तो चोरी, कक की चोरी की लक की चोरी, छुपाया ना, कुछ भी छुपाया, देहभान के वशीभूत होकर छुपाया, किसी से प्रीत है वो छुपाई, हालांकि छुपती नहीं है प्रीत, हाँ खैर खून खांसी खुशी ये सब छुपती नहीं है, बैर प्रीत मत पान ये छुपते नहीं है। तो अगर हम कुछ भी छुपाते भगवान से तो चोरी तो चोरी हुई ना, वो साहेब हमारे दिल पर कैसे राजी होगा। कहते हैं भोलों का भगवान होता है। एक बहन जी ने बहुत अच्छे से ज्ञान ज्ञान सुनाया, और जैसे मन में आ जाता है कभी कभी, कलयुग है, इस दुनिया में सब तरह के लोग रहते हैं, सुर भी हैं असुर भी हैं। तो दो भाइयों को ऐसा मन में आया कि भाई क्या है, ये बहनें बड़ा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य की बात करती हैं, बहुत पवित्रता की चर्चा करती हैं, चेक करते हैं कितनी पवित्रता है इनमें, चेक करते हैं कहां भगवान आया जो इनको बचा लेगा। वो आए, उन्होंने बहन को बोला बहन प्रोग्राम है और आपको चलना है, और एक भाई को लेके आया कि ये फला फला है और इन्हीं के यहां प्रोग्राम है। बहन तो बहुत खुश, प्रोग्राम है ना सेवा में जाने का, तैयार हो गई। और बाबा ने उसी क्षण, एक माता रहती थी उसकी डोर खींच ली, वतन में बुलाया और कहा जाओ, बहन को बोलो नहीं जाना है, कुछ भी बोले नहीं जाना। तो वो माता दौड़ी दौड़ी आई, बहन बस गाड़ी में बैठने वाली थी, तो उसने बहन को कहा आप सुनो एक जरूरी काम है, ऊपर लेकर गई और बताया कि बाबा ने मना किया, आपको नहीं जाना। अब संदेशी बहन कह रही नहीं जाना, तो बहन ने आके बोला भाई ये बहुत इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, ये माता जी आई हैं, तो मैं अभी आपके साथ प्रोग्राम में नहीं जा सकती। नहीं गई। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, वही भाई जो उनको ले जा रहा था वो आया और फुट फुट के रोया पैर पकड़ के, बोला बहन आप मुझे माफ कर दीजिए, बहन को कुछ पता हो तो माफ कर देना। तो बहन ने कहा हुआ क्या भाई? तो बोला उस दिन मेरा मन बहुत कलुषित था और मेरे मन में बहुत गंदे विचार थे, मैं आपको ले जाकर बहुत अधम पापी दुराचारी बनने वाला था। रोता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बहन मुझे माफ कर दो, मैं भगवान को परखने चला था, माफ कर दो, मैं अत्याचार में पापी हूं। रोता जा रहा है, किसने बचाया? बाबा ने। तो जब हम बाबा के प्रति सच्चे होते हैं, जब हम बाबा के आगे हर बात शेयर करते हैं, जब हम बाबा से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, सबसे पहली चीज स्वयं को धोखा मत दो। स्वयं मन में कुछ भी आता है तो बाबा को जरूर बताओ। बाबा तो साकार में था, सब सुनता था। कई बार लोग कहते थे कैसी कैसी बात लोग बाबा से करते हैं, मगर बाबा सुनता था। ऐसा नहीं कि बाबा मना कर देता हो। मैं जहां की बात कर रही हूं, इटावा की वो गाड़ी वाली, वही शर्मा जी यहां आए थे और बाबा ने मुरली में कहा था कि जो बच्चा भगवान पर निश्चय कर लेगा वो भला रुक सकता है। तो आ तो गए, युगल सहित यहां आए, और जहां ये निर्वैर भाई जी का ऑफिस है ना, इस कमरे में वो ठहराए गए, और बाबा सामने वाले कमरे में। तो उनकी युगल ने कहा चलो मिलने, बोला नहीं जाऊंगा। अरे जब मैं भगवान के घर आ गया हूं तो भगवान अपने बच्चे से मिलने नहीं आ सकता है? उनकी युगल ने अपना सर ठोका, बोला क्या करें इस आदमी का, अब क्या करें। उधर बाबा ने क्या किया, जो कहते हैं ना युक्ति युक्त रमजू रमज बाज, दादा आनंद किशोर को बोला बच्चे को नक्की लेक घुमा लाओ। वो शर्मा जी को लेके नक्की लेक गए और पता लगा कि बाबा कमरे तक आया, मिलने आया हूं। अब शर्मा जी तो आते नहीं, मिलता कौन। जब लौट के आए तो उनकी युगल ने कहा कि बाबा आए थे, अब तो उनको काटो तो खून नहीं। और इतना अंदर में ग्लानी कि भगवान मेरे दर पे आया और मैं नहीं था, मुझे अब भी मिलना है, अभी मिलना है। और फिर तो जाके साष्टांग एकदम साकार बाबा के बिल्कुल पैर पकड़ लिए उन्होंने और जो रोया कि आप मुझ नाचीज के उस कमरे तक गए थे और मैं नहीं था, केवल युक्ति थी बाबा की। तो बाबा कैसे कैसे बच्चों को सीधा करता है टेढ़े से। और उनको बाबा ने फिर बहुत देर बात की, क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि बाबा खेती करता हूं। सीधा पढ़े लिखे थे, लेकिन वो था इंडियंस और लॉक्स नॉट अलाउड ब्रिटिश पीरियड में, तो ये बात उनको बहुत खलती थी। बोला नौकरी नहीं करूंगा। तो बताया बाबा को कि बाबा मैं खेती करता हूं और यहां वहां वहां कई जगह अलग अलग। बाबा ने उन्हें कहा बच्चे वो सब भेज दो और एक जगह कर दो, भले खेती करो अच्छा है। सब छोड़ दिया उन्होंने और एक जगह फार्मिंग की, सब बेच बाँच के। तो लोगों को लगता था कि बाबा से खेती किसानी की बात, मगर बाबा सब सुनता था, बाबा राय देता था। उसके बाद उस शख्स ने अपने सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यहां तक कि वो सब विदेश में अभी भी हैं, उनके तीन बच्चे। कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, हाई कोर्ट का जज तक बना, एक बाबा की श्रीमत, कुछ और नहीं। तो ये जो बाबा के साथ सच्चे होके चलते हैं, तो बाबा सहस्त्र बाहों से संभालता है, जरा भी छल नहीं, जरा भी कपट नहीं। हमने जरा सा छल या कपट किया और बाबा ने हमारे कपाट बंद किए। तो हमें बाबा के साथ सचली कौड़ी होकर रहना, जैसे हमारी दादियां रही। जानकी दादी कहती थी ना, सफेद कपड़ा खीसा खाली। हाँ याद करो, कभी जाते जाते भी कोई बैंक अकाउंट रखा नहीं। इतना सच्चा, इतना साफ, और केवल बाबा के साथ सच्ची और साफ रही हूं ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों में भी दादी ने कभी कुछ नहीं छुपाया। गुलजार दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और जानकी दादी ने मुझे बुलाया, कहा तुम जा रही हो, मुझे चिट्ठी देनी है गुलजार दादी। तो मैं पहुंच गई, मैंने कहा दादी चिट्ठी, हंस दी, बोली अभी तो लिखी नहीं है। तो किसी ने मुझे कहा कि तुम बुद्धू हो, बड़ों से ऐसे मांगते हैं। बोला लेटर हेड लेके जाओ, पेन लेके जाओ, तब दादी से चिट्ठी लिखो। लेके गई, दादी अभी लिख दो। तो दादी ने लिखा, अब लिखी तो सिंधी में, हम तो नहीं पढ़ सकते ना। दादी ने उसके बाद कहा सुनाओ क्या लिखा है। तो हम सब हंस दिए जो वहां आस पास खड़े थे कि दादी ने इतने प्यार से लिखा, कहती सुनाओ क्या लिखा है। और दादी ने वो चिट्ठी सुनाई कि मैंने ये लिखा है। बहुत आश्चर्य हुआ, क्या जरूरत थी दादी को हम सबको वो पत्र सुनाने की, अंगे अक्षरे क्या दादी ने लिखा है। गुलजार दादी को कि बाबा का यज्ञ है, तुम जल्दी ठीक होकर आ जाओ, बहुत बच्चे यहां आ रहे हैं, उनकी आंखें तरस रही हैं बाबा से मिलन मनाने के लिए। बस इतना छोटा सा पत्र लिखा दादी ने और हंस के बोली मैंने कभी चिट्ठी नहीं लिखी है, ये लेकर जाओ। तो ये चीज है जो हम लोगों ने आंखों देखी है, बहुत सी चीजें आंखों देखी है। अगर वो वर्णन करने में, कोई पॉइंट नहीं सुना रही आपसे, केवल वो चीजें शेयर कर रही हूं जो जीवन का व्यवहारिक सत्य है। और व्यवहारिक सत्य ये है, हमें बाबा से, उस जानी जाननहार से, उस त्रिकालदर्शी से, उस त्रिलोकीनाथ से, उस सर्व संबंध रखने वाले से, सर्व संबंध रखे हैं, कुछ भी छुपाना नहीं है। और अगर जरा भी छुपा लिया तो ये मान के चलो कि जब भी कभी हम छुपाते हैं तो संबंध बहुत आगे तक नहीं चल सकते। जैसे ही आप जीवन में देख लो, घरों में देख लो, परिवार में देख लो, अगर एक दो से कुछ छुपाने लग जाओगे तो शंका पैदा हो जाती है, बहुत जल्दी परिवार टूट जाते हैं, कहते हैं वो भी कुछ गड़बड़ है, छुपाने लगे हैं। ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई तो आप समझ लो संबंध आगे नहीं चलते। तो जब लौकिक में संबंध आगे नहीं चलते तो पारलौकिक में कैसे चलेंगे? क्या भगवान सहज स्वीकार कर लेगा? क्या भगवान इतना भोला है? मैं जो बात सुना रही थी कि एक एक चीज दिखाएगा, बताएगा, मैंने बहुत बचपन में देखा है कि हम लोग योग कर रहे थे, एक भाई किशोर अवस्था का, ज्यादा नहीं होगा 15 साल 16 साल के बीच का, युवा भी नहीं कह सकते, रो रहा है, रो रहा है, क्या हुआ भाई, आवाज के साथ रो रहा है। तो उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? बोला बाबा धर्मराज, धर्मराज। बाबा और धर्मराज? बोला हाँ, काले कपड़ों में। और सबसे पहले उसको बाबा का साक्षात्कार हुआ था। तो बोला बाबा धर्मराज, बाबा मार रहा है। तो कहा अच्छा ऐसा है, बाबा को हमारे पास आने दो, तुम वहां मत रोको। तो जब योग खत्म हुआ उससे पूछा क्या किया था तुमने, आज बाबा ने तुम्हें क्यों मारा? तब उसने बताया कि आज मैंने एक सिगरेट पी ली थी। ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। तो हमने आंखों देखा, हम लोग तो उस समय बच्चे थे बिल्कुल, माना मेरा ख्याल है 7 या 8 साल की आयु, जब ज्ञान लिया था तो 6 साल की आयु। तो जब वहां से योग करके या सेंटर से लौटते थे, वो भाई बैठ के योग करता था तो जैसे बच्चे शरारती होते हैं ना, वो कागज का बना के गोल गोल नाक में डाल के, देखे योग कर रहा है और वो हिलता नहीं था भाई, इतना अच्छा योग करता था। कुछ भी करो, वो योग में बैठा है तो बैठा है। और उसी भाई को हम लोगों ने रोते हुए देखा। एक साल डेढ़ साल के बाद हम लोग वहां से देहरादून से हटके दूसरे स्थान पर आ गए थे, तो अपने ही यहां योग कर रहे थे बाबा के कमरे में, जब ये देखा सीन। तो धर्मराज कोई अलग ढंग से देगा सजाए? नहीं, हमको यही मिलती है। कभी मन रोता है, कभी आंखें रोती हैं, कभी कार्मिक अकाउंट रोग के रूप में आता है, कभी परिस्थितियों के रूप में आता है, कभी संबंधों में आता है। तो हमें उस समय सोचने के लिए विवश होने पड़ता है कि हमने बाबा से क्या छुपाया है, कहां मस्ती की है, कहां बाबा की मर्यादा तोड़ी है, कहां हम माया की गोद में खेले। बाबा जानता है। बाबा इसलिए नहीं कहता मेरे बच्चे लज्जा से आंखें झुका लें, मुरली में कहा है, अव्यक्त वाणी है जो ये कहती है कि जब चाहो तो मैं तुम्हें, जिस समय तुमने जो किया है मैं तुम्हें बता भी सकता हूं, मैं तुम्हें समय काल डेट माना दिनांक सब बता सकता हूं, कब कहां किसके साथ, लेकिन बताऊंगा नहीं। कमजोर नहीं है भगवान, लेकिन कहता है बताऊंगा नहीं। क्यों? भगवान नहीं चाहता कि हम उसके बच्चे अपनी आंखें झुकाएं, शर्मिंदा हूं। तो अभी उस बाप टीचर सतगुरु का पाठ लगभग लगभग पूरा हो रहा है। अभी भी जो थोड़ा बहुत वक्त है, उस वक्त को सफल करके अभी भी कुछ अगर कहीं कोने में है हमारे मन के, तो बाबा के आगे रखते हैं। बहुत अच्छा मौका है, बाबा की झोपड़ी है जहां खत लिखते हैं। बाबा के आगे अपनी स्वीकारोक्ति अपना खत डालते हैं। किसी भी तरह की डस्ट हमारे दिल पर नहीं चाहिए, तब वो साहेब राजी होगा, तब वो विनाश के अंतिम घड़ियों में हमारा हाथ और साथ नहीं छोड़ेगा, तब वो सर्व संबंधों से निभाएगा, रक्षक बनकर भी, शिक्षक बनकर भी, सतगुरु बनकर भी। समय पर आपको वो चीज याद आ जाना, समय पर आपको वो दवा याद आ जाना, समय पर आपको वो दृश्य याद आ जाना, ये भी बड़ी बात है। तो बाबा हमारी किसी न किसी रूप में मदद करेगा। कब करेगा? जब हम बाबा से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, सच्चे और साफ होंगे। अगर कुछ भी छुपाते, 1984 में बाढ़ थी इसी गुजरात में बहुत, और बाबा जो कहता है टच और कैच, हम सबको टच होता है लेकिन हम कैच नहीं कर पाते। एज इट इज ये लगता है आज मन उखड़ा उखड़ा है, हुआ क्या है, कहां हुआ है, वो हमको क्लियर नहीं होता। बहनों के पास तो फोन आ गया था कि बाढ़ आ रही है, पानी बहुत तेज है, आप लोग आ जाओ निकल के। बहनों ने सोचा थोड़ा ब्रश कर लें, सुबह का टाइम था, थोड़ा ब्रश कर लें और उसके बाद निकल जाएंगे। जब तक वो वहां ब्रश करती तब तक पानी इतना इतना भर गया, तो उसके बाद वो वहां से उस पानी की गति देखकर ऊपर गई और ऊपर गई, छत पर जाकर बैठी और पानी पूरे सेंटर में भर गया। एक दिन बाद 24 घंटे बैठी रही, जब भोग लगाया किसी दूसरे स्थान पर, तो बाबा ने कहा मेरी दो बच्चियां 24 घंटे से वहां बैठी हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, मैं ये भोग कैसे खा सकता हूं, जाओ पहले उन्हें निकाल कर लाओ। भेजा गया, लोग गए वहां। आपको आश्चर्य होगा कि उस सेंटर का कुछ नहीं बिगड़ा, सामान जरा भी बाहर नहीं गया। बाबा के क्लासरूम में जो संदल थी वो पलट गई और वो दरवाजे से लग गई, तो पानी तो भरा अंदर लेकिन अंदर का सामान बाहर नहीं गया। डिब्बे थे वो पलट गए लेकिन उसमें अंदर पानी नहीं भरा। वंडर था, बाबा ने वो दृश्य सामने सामने दिखाया। लेकिन ये भी अनुभव कराया कि जब बाबा टच करा रहा है उसी समय बाबा की बात को कैच करके आपको वो कर लेना है। और अगर आप मन मत चला लेते हो, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा थोड़ी देर बाद। ऐसे बहुत से सीन हमने देखे हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा हमको बेहद का वैरागी बना रहा है। अगर हमें अपने दिल पर साहेब को बिठाना है तो जो कुछ जमा पूंजी है निकाल के बाहर कर दो, जो कुछ जमा पूंजी है, केवल वहां साहेब के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। शीश उतारे भुई धरे तब बैठ है घर माई। आज भी बाबा ने कहा ना, मौसी का घर नहीं है। कहते ना, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना ही। तो यहां भगवान हमारे दिल पर बैठा हो, कुछ और नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई वैभव नहीं, किसी चीज से कोई लगाव नहीं। जब बोलो तब चल देंगे, हम तैयार हैं। तो हमें राग नहीं चाहिए, बेहद का वैराग चाहिए। और जब बेहद का वैराग होगा, जब हमारी दिल इतनी सच्ची होगी कि हम बिल्कुल निश्चय बुद्धि होंगे अटल, तो अचल होंगे अडोल होंगे। हम लोगों को मनोहर दादी कूट कूट के भरती थी, व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, वैभव नहीं। आज भी वो चीज अंदर तक भरी हुई है। तो ऐसे सच्चे साफ दिल हम सबको बनना, ये नहीं सोचना कि केवल दीदियों को बनना है। व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, वैभव नहीं, इस बहनों की बात है हमारे लिए नहीं। नहीं, हमें भी बहुत कष्ट देगा अगर कहीं भी अटकाव होगा, तो बहुत कष्ट देगा, क्योंकि प्राकृतिक भी हमारे सामने परीक्षाएं आने वाली हैं। 2012 से पहले जो वाणियां थी, 13 से पहले जो वाणियां थी, उनको देखना खोल के। बाबा पूछा करता था कि बच्चे प्रकृति इजाजत मांग रही है, ये साइंटिस्ट बच्चे मेरे इजाजत मांग रहे हैं, आप रेडी हो, बोलूं इनको? उसके बाद की वाणियां देखो, हाँ, इजाजत वाली बात खत्म हो गई, प्रकृति ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जब बहुत भयंकर समुद्री तूफान आए, कुछ और आपदाएं आई, लोगों ने बाबा से कहा, तो बाबा ने जवाब दिया था, बच्चे ये तो रिहर्सल है, ये तो ट्रायल है, अभी तो असली सीन बाकी है। अभी तो एक जगह कुछ होता है, कच्छ और भुज में भूकंप आया तो सारी दुनिया ने मदद की, अभी ऐसा होगा कि प्रकृति के पांचों तत्व उछलेंगे, कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। मुझसे एक बार सबने कहा, चलो जरा दिखा लाओ बाढ़। मैंने कहा, कोई मर रहा है और आपको बाढ़ देखने की पड़ी? बोला, नहीं नहीं, ले चलो ना, ले चलो। बहुत कहा तो मैंने कहा, अच्छा चलो, लेके गई। तो हम लोग गाड़ी से निकल रहे थे और जब गाड़ी निकलती है पानी में तो हिलोर और ज्यादा लहर उठती है। एक बहुत बड़े बंगले से एक महिला निकल रही थी, मारुति की छत तक पानी भरा हुआ था गाड़ी की, और उस बहन ने कुछ सामान, अमूल्य होगा कुछ, एक छोटे से ब्रीफ केस में रखा हुआ था, अपने सर पे ब्रीफ केस रखा हुआ था, और वो पलट पलट के घर की ओर देख रही थी। एक कदम आगे बढ़ाती थी रुक जाती थी, आगे बढ़ाती थी रुक जाती थी। हमने वो सीन देखा और पानी बढ़ता जा रहा था उसके, मतलब कमर से ऊपर जा रहा था। तो अगर राग होगा तो फिर क्या होगा, सोच सकते हैं? ये भूल जाइए कि केवल बहनों के लिए है, आपके भी दरवाजे लोग खटकाएंगे। हम सोचते हैं कि दुनिया नहीं जानती, दुनिया बहुत अच्छी तरह जानती है कि आप योगी आत्मा हो। आप कहोगे भी, वो कहेंगे हम कष्ट में हैं, जरा सा हाथ रख दीजिए, जरा सा दृष्टि डाल दीजिए। आप कहेंगे दीदी के पास जाओ, हमारा आश्रम है वहां जाओ, वो दृष्टि डालेंगे। वो कहेंगे नहीं, वहां नहीं, जाने का वक्त ही नहीं है, आप डाल दीजिए। तो आप क्या कहेंगे? हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास वो स्टॉक नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कहेंगे नहीं, कह पाएंगे, चाह के भी नहीं कह पाएंगे। तो अभी भी वक्त है कि साफ सफाई करके हम अपने दिल में दिलाराम को आसन दें, बिठा लें और उसके साथ बैठें, तब हम अंतिम समय में सफल हो पाएंगे। अगर जरा भी कुछ होगा, मैंने कहा था मैं कल भी नाम नहीं लूंगी और आज भी मैं नाम नहीं ले रही हूं, बाबा मुरलियों में बहुत कुछ कहता है। अगर कुछ भी होगा, 5-7 में से एक भी होगा, 5 तो बड़े बड़े हैं, उन्हें छोड़ा है पीछे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, पालतू जानवरों को हम बोरों में भर के, बिल्ली हुई, कुत्ता हुआ, बाहर छोड़ाते हैं, मगर फिर वो सूंघते हुए रास्ता वापस आ जाते। तो ऐसा ना हो, 5 छोड़ देते हैं लेकिन हम ब्राह्मणों के बीच में आलस और अलबेलापन, ये 2 ऐसे हैं, फिर आ जाते हैं। तो हमें इस समय अंतिम समय है, बिल्कुल समझौता नहीं करना है और अपनी तैयारी करनी है। कुछ भी हो, अच्छी तरह सफाई करके निकाल दो और बाबा के लिए बहुत साफ, जैसे सबरी ने अपना आंगन साफ किया था, मेरे राम आएंगे, ऐसे हम अपने हृदय को साफ करके बाबा के लिए दोनों पट खोल दें। बस आप हो और बाप हो, दूसरा ना कोई हो, ठीक है ना? अभी इसी भाव से हम बाबा के साथ बैठेंगे। हाँ, हमने आपका ज्यादा समय ले लिया, योग करेंगे, ठीक है ना? इसी भाव के साथ बैठें।
Thank you. नाचते रहते हैं। अच्छे हैं।